निवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। गाथाओं का पाठ आप करते हैं तो इतने दिनों से कर रहे हैं तो आपको कुछ मालूम पड़ता है लाभ उसका? यानी ये जो विषय अपन चला रहे हैं उसका रोजीना रिपीटिशन हो जाता है, क्या चलाया, क्या निकल गया, कहाँ आ गए हैं, कुछ अंदाजा लगता है? यदि उपयोग को केंद्रित करेंगे तो अंदाजा अवश्य लगेगा, और अंदाजा लगेगा तो वो बात यहाँ पर जो कही जा रही है वो समझ में आएगी। ये जो प्रकरण चल रहा है कि परद्रव्य का और रागादि भाव का, आत्मा करता है या नहीं, तो यहाँ पर अभी तक ये करते आए हैं कि आत्मा पर का करता नहीं है और रागादि भावों का करता है। इसी गाथाओं में ये कहते आए थे, और अब इस गाथा में निष्कर्ष निकालते हैं। गाथाओं का अर्थ करें तो ऐसा लगता है कि अभी वही बात कह रहे हैं कि पर का करता नहीं है, समझे? दो करो बागन दोनों, पर को करे निज रूप जो, पर रूप जो निज को करे, अज्ञान मय वय आत्मा ही कर्म का करता बने। पर रूप ना निज को करे, पर करे करे पर को निज रूप ना करता नहीं हो कर्म का सदभान मय वय आत्मा। अरे कहना पर को निज रूप करे और पर रूप को निज करे। अब ये वो भाषा आ गई कि आशवादिक भावों में जब तक भेद नहीं जानेगा तब तक ये करता नहीं बनेगा, लेकिन उसको भाषा ऐसे पर का कर, पर को निज रूप करे, निज रूप करे का अर्थ क्या? तो इसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों चीजें लेना। अपन बोले ये इसको अपने रूप करता है माने ये मैं हूं ऐसा मानना, ये मेरा है ऐसा मानना, मैं इसका करता हूं ऐसा मानना, मैं इसका भोगता हूं ऐसा मानना। क्या क्या कहते हैं कि पर को करे निज रूप, पर को निज करता है नहीं, पर को निज रूप करता है। ये अकेले करने की बात नहीं है, भाषा करने की है। निज रूप करना माने निज रूप मानना, निज रूप जानना। पर को करे निज रूप जो, पर रूप जो निज को करे, और निज को पर रूप करे और पर को निज रूप करे, है ना? अज्ञान मय वय आत्मा ही कर्म का कर्ता बने। वो अज्ञानी आत्मा रागादि का तो करता है पर कर्म का कर्ता बनता है, जो बाहर के कर्म। ऐसा अज्ञान मय जो आत्मा पर पदार्थों का कर्ता बनता है, होता है, और अज्ञान मय वह आत्मा ही कर्म का कर्ता बने। लिखे पर रूप ना निज को करे पर हो न, निज को करे पर रूप ना, पर को निज रूप नहीं करे, निज को पर रूप ना करे, तो वह सद्ज्ञानमय आत्मा पर का कर्ता नहीं बनता है। गाथा में तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर के कर्तृत्व के निषेध की बात चल रही है, लेकिन प्रकरण रागादिक का कर्ता है इसका चल रहा था। तो रागादि के बारे में तो कुछ नहीं कहते हैं, यदि उस बात को भूल ही गए हो क्यों? तो अमृतचंद्राचार्य ने टीका में उस बात को उठाया है, और टीका में मैं पहले थोड़ा बता देता हूं फिर पढ़ूंगा। इसे तो उदाहरण बनाते हैं, पर को करने नहीं करने को, और रागादी भाव के करता नहीं करता के उसको सिद्धांत बनाते हैं। तो इस भाषा में बात करते हैं, जिस प्रकार यह आत्मा पर को जानता है तो पर को जानने रूप क्रिया का कर्ता तो होता है, पर का कर्ता नहीं होता, पर के प्रणव रूप क्रिया का कर्ता नहीं होता। फिर सुनो, यह आत्मा पर को जानता है, पर के प्रणवन को जानता है, तो उस अपने जानने रूप पर के प्रणवन को जानने के प्रणवन रूप अपनी जानन क्रिया का कर्ता तो होता है, पर के प्रणवन रूप क्रिया का कर्ता नहीं होता। ये उदाहरण हुआ। तो सिद्धांत कि जैसे यह आत्मा पर को जानते हुए पर के जानन रूप क्रिया का कर्ता होता है, पर के प्रणवन रूप क्रिया का कर्ता नहीं होता, उसी प्रकार यह आत्मा रागादिक को जानने वाला आत्मा रागादिक के जानने रूप क्रिया रूप तो प्रणवित होता है, पर रागादि रूप प्रणवित नहीं होता। ये बहुत सरल भाषा में मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस इतना ही है, बाकी सारा व्यायाम है। व्यायाम नहीं, भाषा में ही व्यक्त किया है, करें क्या। ये निष्कर्ष आप निकाल, पढ़ता हूं तो आपको अंदाज लगेगा। जो पर को अपने रूप करता है और अपने को पर रूप करता है, वह अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है। जो पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को भी पर रूप नहीं करता, वह ज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता नहीं होता, अकर्ता ही रहता है। उक्त गाथाओं का भाव आत्मख्याति ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। ये आत्मख्याति का टीका का अर्थ अपन ने किया है। आत्मख्याति जो संस्कृत जानते हैं वो वहां भी देखें, और जो पुराना अपना समय सार है जयचंदी छावरा की जो सोनगढ़ से छपी टीका है, तो कई जगह से छप गई ना, और जो थोड़ा थोड़ा अंतर भी आ गया है उसमें, उनमें भी मिलान करके देखें, और फिर आपको भाव स्पष्ट होता है। तो ये भी देखें कि किससे अधिक आपको भाव स्पष्ट होता है। क्या, जब तक यह आत्मा अज्ञान से स्व और पर में परस्पर भेद नहीं जानता, तब तक पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ, स्वयं अज्ञान रूप होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। क्या, देखो, जब तक यह आत्मा परस्पर भेद नहीं जानता, तब तक पर को अपने रूप अपने को पर रूप करता हुआ, लेकिन हुआ क्या, पर का कर्ता हो नहीं गया, अज्ञान रूप होता हुआ है। अंतर करता हुआ और होता हुआ दो शब्द पड़े हैं। पर को करता हुआ माने पर का मैं करता हूं ऐसा मानता हुआ, और अज्ञान भाव रूप होता हुआ। क्या, दो दो पांच होते हैं, ऐसा पर को जानता हुआ स्वयं इस अज्ञान भाव रूप होता हुआ, माने पर को जानते हुए वो वैसा हो नहीं गया। क्या हुआ, क्या अज्ञान रूप हुआ, तो वस्तु भी वैसी नहीं हो गई। दो दो को पांच जाना तो वहां दो पांच चीजें नहीं हो गई, और यहां भी कुछ नहीं हुआ, वो अज्ञान भाव हुआ, उस रूप हुआ ये आत्मा। किंतु जब वह आत्मा ज्ञान से स्व और पर में परस्पर भेद को जान लेता है, तब पर को अपने रूप और अपने पर को पर रूप नहीं करता हुआ, स्वयं ज्ञान रूप होता हुआ कर्मों का अकर्ता प्रतिभाषित होता है। तब आपको अकर्ता मालूम पड़ जाएगा कि कर्म ने इसने कुछ नहीं किया। अब उदाहरण लेते, देखो इसी बात को इस सामान्य तरीके से कह दिया, फिर उसी को उदाहरण से फिर उसको उदाहरण काय को बनाया देखना। जिस प्रकार शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ पुद्गल परिणाम की शीत उष्ण अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। देखो पुद्गल की ठंडा और गर्म है पुद्गल, तो कहते हैं कि उस पुद्गल में कोई जीव उसे ठंडा और गर्म जाने ऐसी योग्यता उसमें है, उसे जनाने की योग्यता, जानने की नहीं, माने उसको ज्ञान ने अपनी अकेले योग्यता से जान लिया और उसको अधिकार हस्तक्षेप कर दिया। वो तो नहीं चाहता था कि मैं जानने में आऊं, तो ये ज्ञान ने जबरदस्ती उसे जान लिया। तुम जैसे आए हम उधर, एक किताब तुम लिए थे, तुमने ऐसा हाथ पीछे कर लिया, तो तुम तो छिपा रहे हो, तो फिर हमने जान लिया। ऐसा नहीं कि तुमने ऐसी देखने की कोशिश की कि ये किताब कौन है, तो हमने कहा अच्छी तरह देखो ना, अच्छी तरह देखो। यानी जिस गेय को जाना है उस गेय के साथ जबरदस्ती नहीं हुई है क्या, कि वो तो छिपना चाहता है और हमने उसे जान लिया है। वो गेय भी अपने को जनाने की क्षमता उसमें है, वो योग्यता है, और रूप जनाने रूप परिणमित होता है, मतलब वो निरंतर ही अपने को छिपाने रूप परिणमित नहीं होता क्या। कोई भी गेय स्वयं को छिपाने रूप परिणमित नहीं होता। जिस प्रकार श्री कृष्ण का अनुभव कराने में समर्थ पुद्गल, पुद्गल परिणाम की श्री कृष्ण अवस्था पुद्गल से अभिन्न है के कारण आत्मा से अत्यंत भिन्न है ना, जिस तरह वो उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा अत्यंत भिन्न है। अब उसके निमित्त से आत्मा में को जो अनुभव हुआ काय का बोले, ये पुद्गल का भाषा आएगी लोग पुद्गल का, लेकिन वो आत्मा से अभिन्न है, इसलिए वो आत्मा है वास्तव में, वो पुद्गल नहीं है। देखो गुरुदेव का प्रश्न चल रहा था ना, उसमें भी ये बात आ रही थी बार बार, और गुरुदेव को ऐसा लग रहा था कि गुरुओं की गले नहीं उतर रही है, इसलिए कम से कम चार दफे उन्होंने बोला क्या 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 शुद्धात्मा का ज्ञान। तो कहते शुद्धात्मा तो त्रिकाली ध्रुव है, और ज्ञान यहाँ जो प्रणमन वाला ज्ञान लेना है, तो अपन तो कहते हैं त्रिकाली ध्रुव में तो प्रणमन वाला ज्ञान शामिल ही नहीं होता है, तो वो उसका कैसे हो सकता है क्या। शुद्धात्मा का ज्ञान ये सब सुन रहे थे कि नहीं, तो वो बार बार कह रहे थे कि वो ज्ञान शुद्धात्मा का कहाँ है, क्योंकि शुद्धात्मा में तो त्रिकाली ध्रुव है, पारणा में भाव रूप है, और ये तो जानने रूप है, तो अब उसे फिर शुद्धात्मा का ज्ञान क्यों कहते हैं। तो वो कहते हैं लोक में जो ये बनता है उसका ज्ञान कहने की भी पद्धति है, कि रूमाल का ज्ञान बोलते हैं, रूमाल थोड़ी जान रहा है, कहने का अर्थ ये है कि जैसे रूमाल का ज्ञान कहा जाता है, शुद्धात्मा का ज्ञान भी ऐसा ही कथन है क्या। तो तुम समझ लो शुद्धात्मा का तो ज्ञान है और रूमाल का नहीं है, ऐसा नहीं है। शब्द का ज्ञान उसके पहले शब्द का कहा था उन्होंने, ज्ञान शब्द का, ज्ञान तो जड़ है, तो शब्द का ज्ञान कैसे हो सकता है। जैसे शब्द का ज्ञान नहीं है वैसे ही शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, सुनना, और जैसे शुद्धात्मा का ज्ञान है वैसे शब्द का भी ज्ञान है उसी नियम के अनुसार। क्यों क्या, मैं आपके मकान में किराए से रहता हूं सुरेश जी, तो मैं उसे अपना घर कहता हूं, और आप उसे उसी रहते उसी में आप भी रहते हैं तो आप उसे अपना घर कहते हैं। तो आप कहते हैं कि आप किसी कैसे से अपना घर कर सकते हैं, ये घर तो मेरा है, आप तो किराए से रहते हैं। कि ना तुम्हारा है और ना हमारा है, तुम्हारे नाम रजिस्ट्री है और मेरे नाम किराया नाम है, और इन दोनों को ही एक नए ही ग्रहण करता है। तो जिस नए से एक तुम्हारा घर है उसी नए से मेरा भी घर है, समझ में आए? यही तो अन्याय हो जाएगा कि मालिक का घर और किराएदार का घर, क्यों बोलो है? एक हम क्या कह रहे, जिनवानी में एक ही नए रखा, वहां दो नए रखे ही नहीं, कोई उठते है तो सर दूर व्यवहार नए से ये तुम्हारा मकान है और उसी उठते है तो सिर व्यवहार नए से हमारा घर है। और उसी असदूत व्यवहार में से ये देश भी हमारा है, क्यों? और उसी व्यवहार में से मध्य प्रदेश आपका है और हमारा राजस्थान है, क्यों? भारत दोनों का है, लेकिन ये दोनों नहीं कह सकते कि मैं मध्य प्रदेश का भी हूं और राजस्थान का भी हूं, ये ऐसा कुछ भी ठोको आप, क्योंकि हम बहुत स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं। मध्य प्रदेश वाले से काम पड़े तो मध्य प्रदेश के बन जाते हैं, राजस्थान वालों से काम पड़े तो 40 साल से राजस्थान में रहता हूं, राजस्थान का नहीं हूं तो क्या, क्यों? और महाराष्ट्र में बनना हो तो मेरे सारे बच्चे महाराष्ट्र में रहते हैं, मेरे घर महाराष्ट्र में है, मैं महाराष्ट्र में कैसे नहीं हूं? और गुजराती, गुजराती नहीं हूं, हमारे गुरुदेव जी तो गुजरात के ही है, उनका फट सिस्टम, गुजराती कैसे नहीं हूं, क्यों? अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से हम दारों तरह के बन सकते हैं ना, लेकिन कहते भारत के तो बन सकते हो तुम, लेकिन चार में से किसी एक के ही बन सकते हो। यहां भी नागरिकता होती है, भारत की होती ना जैसी, वो कहते हैं राजस्थान में नौकरी चाहिए तो पिछले 10 साल से राजस्थान में रहते हो उसका प्रमाण पत्र लाओ, 10 साल से रहते हो गए तो तुम्हें हम राजस्थानी मानेंगे, क्यों? अब यही तो बंबई का चक्कर है कि बंबई में जितने लोग हैं वे महाराष्ट्रीय हैं क्या नहीं है, बोलो क्या करें? हमारी समस्या है कि महाराष्ट्र के कितने विद्यार्थी हैं, अब वो एक गुजराती महाराष्ट्र में रहते हैं उसके माँ बाप, और राजस्थानी के माँ बाप भी महाराष्ट्र में रहते हैं, अब दोनों आए बंबई रहते हैं, अब वो कहता है मैं राजस्थानी हूँ, अब वो कहता है मैं गुजराती हूँ, महाराष्ट्र में कोई नहीं कहता, हम क्या कहें? अब कोई बाल ठाकरे का बंधन ही चाहता तो मैं जबरदस्ती बनाऊ, मुझे उनकी गिनती किस में करूं? मेरे आदमी आकर के मेरे कर्मचारी पूछते हैं कि इसे गुजरातियों में लिखूं या महाराष्ट्रियन में लिखूं, बोलो क्यों, बोलो क्या कहेंगे? क्या रमेश भाई, यहां जितने बैठे हैं आप अभी गिनती करो, और सबसे एक एक करो, अभी मैंने समझा उस बात को गौर कर दो और लिखो कि गुजराती कितने हैं, महाराष्ट्र कितने हैं, तो क्यों एक गिनती कराओ तो कन्नू भाई तुम क्या लिखोगे? सच बोलना, मुंबई में रहते हैं इसलिए महाराष्ट्र नहीं, तो कैसा निर्णय होगा कि ये गुजराती है? क्यों 3 पीढ़ी से मुंबई में रहते हैं, अब तो ये कहते जो खांकड़ा खाए सो गुजराती, गुजरातियों की परिभाषा तो ऐसी है, मैं क्या कहूं? मैं आपको एक सत्य कितना सुनाता हूं इस बात की, करीब बहुत 40 साल पुरानी बात होगी कि मैं कलकत्ता से गुवाहाटी जा रहा था प्लेन से, गुवाहाटी में मेरे व्याख्यान थे इसलिए, तो उस वक्त तो वहां महाराष्ट्रियों की बहुत पिटाई हो रही थी और महाराष्ट्रियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, व्यापारी छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, ख्याल में है ना? और वहां जो डिक्शनरी बनाई है तो उसमें क्या लिखा, मारवाड़ी शब्द का अर्थ क्या लिखा है? परनारी, लुच्चा गवार लुटेरा बदमा ये अर्थ लिखे हैं काय के मारवाड़ी शब्द के डिक्शनरी में। तो मेरे बगल में एक नेता बैठा था वहीं का, मतलब असली नेता था ट्रेन में। तो थोड़ी बातचीत शुरू हुई तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि तुम्हारे आसाम को समृद्ध करने में जितना मारवाड़ियों का योगदान है उतना किसी का नहीं है। वो तो सारे बड़े उद्योग उनने यहां आके लगाए हैं, तुम्हारे पास उद्योग कहां थे? इतना विकास उन लोगों ने यहां किया है और तुम लोग ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों करते हो? क्योंकि मेरे से मारवाड़ी मिलते थे आगे जयपुर में और अपना रोना रोते थे और ये कहते थे हमने जाके वहां फैक्ट्री लगाई, ये किया, ऐसा जमा दिया, ऐसा बढ़िया कर दिया, हमारा ऐसा दे व्यवहार है। तो मेरे दिमाग में वो बात जम रही थी। तो उसने जो बात कही वो बहुत मार्मिक थी, वो मैं आपको दो मिनट में सुनाता हूँ। और मैंने जाते ही जब मैं गुवाहाटी पहुंचा तो पहले व्याख्यान हुआ, तो पहले व्याख्यान में मैंने वही बात कही वहां जाकर उन लोगों से। क्या दर्द था उसका नरेंद्र जी? उसका दर्द ये था कि ये मारवाड़ी आते हैं ना, हमारे यहां से सब कमाते हैं, करोड़पति वहां से करोड़ों रुपया लेके नहीं आते, ये यहां के कमाए हुए करोड़ों रुपया है। स्कूल खोलेंगे तो मारवाड़ में, मंदिर बनाएंगे तो मारवाड़ में, मुनीम लाएंगे तो मारवाड़ का, रसोईया लाएंगे तो मारवाड़ का, हमारे आदमी को नौकरी पे भी नहीं रखते, चपरासी भी इन्हें मारवाड़ के थी, हम चपरासी बनने लायक भी नहीं है क्या? सारा विकास करेंगे मारवाड़ में, इन्हें वहां नाम कमाना है, यहां बनाने में ऐसा नहीं लगता कि हमारा नाम होगा। देवले पांच पांच पीढ़ियों से यहां है, इनके बाप के बाप भी यही पैदा हुए थे, लेकिन आज तक असमी नहीं बने। यदि आप इनको सपने में भी जगाकर पूछो कि आप कौन है तो बोले मारवाड़ी, असमी नहीं बोलेगी, जबकि इनकी मारवाड़ में बोतल लिस्ट में नाम भी नहीं है। क्यों? पर इसलिए हम इनकी पिटाई करते हैं। अरे भाई हमारे यहां से कमाते हैं तो कॉलेज हमारे यहां खोले, अरे अपना जैन मंदिर बनाया है लेकिन यहां तो बनाए बढ़िया मंदिर। जो भी विकास उन्हें करना है वो ही करें, लेकिन यहां करें इंजीनियर कॉलेज। अब बिल्ला जी ने प्राणी में जाके इंजीनियर कॉलेज खोला, कमाई सारी कलकत्ते की, क्यों? और कॉलेज प्राणी में, क्यों? उनका गांव है, अभी तक वो उनका गांव बना रहा, तीन पीढ़ियों से कलकत्ता में रह रहे कमा रहे, कलकत्ता उनका गांव नहीं बना, हम क्या करें? क्यों? अब आप सब लोग छाती पे हाथ रख रख करके सोच रहे हैं, तो आपको पता लगेगा, अंदाजा लगेगा कि मुंबई में सब पालनपुरी यहां बैठे होंगे, सब जाके पालनपुर में करेंगे, पालनपुर। अभी तक ये पालनपुरी ही है, तीन तीन पीढ़ी से बंबई में रह रहे, सारी कमाई बंबई की है, बंबईया हुए नहीं। देवलाली किनका है बोलो? ये महाराष्ट्र में ये छोटा गुजरात है क्या नहीं? बोलो क्यों भैया, बोलो सच्ची बात है कि नहीं? कड़वी तो लगेगी लेकिन बात सच्ची है। मैंने आगे पहले ही व्याख्यान में कहा कि भाई हम ये नहीं कहते तो मारवाड़ में नहीं करो, यदि 50% वहां करो तो 50% यहां करो, दिखे तो यहां भी दिखना चाहिए ना तुम्हारी धर्मशाला, यहां भी दिखना चाहिए तुम्हारी मंदिर, यहां दिखना चाहिए ना तुम्हारा कुछ स्कूल कॉलेज इंजीनियर कॉलेज जो भी विकास करते हैं ना वो सब तुम्हारा यहां भी देना चाहिए, इसको जो सब देखेंगे तो मारवाड़ी को रसोई में मारवाड़ फैलाते हो, हम क्या करें मारवाड़ी चूरमा बाटी कोई वही बना पाते हैं, ये असली तो बना ही नहीं पाते हैं। अरे ट्रेनिंग जैसे ये भी बना लेंगे, चलो नहीं सही, बर्तन बनने वाला तो रख लो यहां से, क्यों क्यों क्या दिक्कत है बोलो? कैसा दिक्कत है? आप नहीं समझोगे, बताओ भाई, बता दो, हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ही धंधा है समझने समझाने का भाई जी। बोली कि जब हम यहाँ आपस में बैठकर आसामियों को गाली देते हैं, तो एक आसामी वो बैठा होगा तो फिर हम वो नहीं दे पाएंगे, हमारी जबान पे लगाम लग जाएगी। पाले भैया बैठ बैठ कर इकट्ठे जो गपशप में लगा सकते हैं और बाकी की क्यों खटी खटिया खड़ी कर सकते हैं, और एक आकर के गैर पालन पुरिया बैठ गया तो सबको वो मार जाएगा, बैठ जाएंगे क्यों? क्या राजनीति समझ में आता क्या नहीं आता? हमको एक भी नहीं चाहिए क्योंकि हम अपनी गुटमेंट नहीं कर सकते हैं, हम गुजराती में गालियां नहीं दे सकते हैं। ये जो हमारे अंदर में इतनी गहरी सांप्रदायिकता पड़ी है, अब ये समझ लो क्यों है कि हम अनादि काल से भगवान आत्मा होने पर भी हमारा देह में ऐसा एकत्व है जैसा पांच पीढ़ियों से आसाम में रहते हुए भी आप मारवाड़ी बने हुए हो। मैंने तो एक कहा था, मैं लंदन जाता हूँ हर साल, तो वहां पर मैं जिनके घर ठहरता हूँ उनके घर पे गरीबी गुजरात अखबार आता है और गुजरात समाचार भी वहाँ छपता है, तो वो भी आता है। तो जब भी भगवान जी भाई थे ना कतरा भाई, भगवान जी भाई, तो वो जानते थे कि डॉक्टर साहब को समाचार पढ़ने को नहीं मिलते हैं, तो गुजराती भी पढ़ते हैं, तो सारे इकट्ठे दो दो महीने के रख करके मेरे लिए रखते थे। मियामी में महेंद्र भाई के पिताजी है ना भूपत भाई, वो रखते हैं। क्यों तो तुम पढ़ते नहीं पढ़ते? वो लाके रखेंगे दो महीना के, पंडित जी ये गुजरात समाचार है और ये गरीबी गुजरात है, और हम उसे पढ़ के काम चलाते हैं। हिंदी के तो मिलते ही नहीं है, तो उस पर लिखा रहता है ऊपर के पेज पर, जहां बसे एक गुजराती तहां बसे गुजरा। क्या कम से कम 25,000 पढ़ चुका होऊंगा मैं, हर साल पढ़ना पड़ता है मुझे। वो लंदन में जाकर के अभी गुजराती नहीं मिटे, अरे गुजराती तो क्या कच्ची नहीं मिटे। वो गुजरात में भी छोटा सा एरिया, ये झालावाड़ी, ये कच्ची, ये गुजराती, ये मेवाड़ी, एक क्या बोलते हैं काठियावाड़ी तो है ही इधर है ना, ये जो जो नगर जोरावर नगर वगैरह है ना, इसको बोलते झालावाड़ी। हम तो समझते थे झालावाड़ हमारे राजस्थान में है, इतना तो पूरा झालावाड़ एरिया क्या तुम झालावाड़ के नहीं हो? यह झालावाड़ है, सुरेंद्र नगर का वो सारा एरिया है वो झालावाड़ कहलाता है। राम जी भाई कहते थे सुनो कि जितनी झाड़ा वालियों की पगड़ी में पेच होते हैं ना, उतनी इनकी पेट की आंतों में भी पेच होते हैं, इतने ही आंटे होते हैं, इनसे बात संभल के करना। हम तो सबको एक गुजराती समझते हैं, यहाँ तो इतने भेद निकले, हिंदियों में भी है खबर नहीं, बिहारी हिंदी, अलग अलग हिंदी वाले भी, हरियाणवी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, मध्य प्रदेशी हिंदी, बहुत हिंदी भी है, हिंदी के बुंदेलखंडी कितने कितने भेद है, समझ में आई ना? और जितना भेद का शिकार यहाँ होना पड़ता है ना, इतना हमें आपस में भी होना पड़ता है। ये तो बुंदेलखंडी है, ये तो फलानी तरफ का है, क्यों वहां पर भी वही चलता है? क्योंकि इस मामले में कोई पीछे नहीं है, प्रतियोगिता होगा तो कोई सेकंड नहीं आएगा, सब फर्स्ट आएंगे। ऐसे ही कहते हैं कि ये जो सारे गे पदार्थ हैं उनका जो ज्ञान होता है वो उनके कारण नहीं होता। ध्यान से सुनना अभी कुमार जी, ये क्या कहना चाहता हूं, ठीक है ना? तो क्योंकि यदि इस रूमाल का ज्ञान रूमाल के कारण नहीं हुआ, रूमाल में प्रमेयत्व गुण है तो इसको जनाने की ताकत है, लेकिन ज्ञान में जो जानने की ताकत है वो इसके जनाने की ताकत की अपेक्षा नहीं रखती,
ठीक है। अब ऐसे ही पुत्रकाली फिर भगवान आत्मा है ये, और वो ही ज्ञान की पर्याय है ज्ञायक। तो जैसी अब यहाँ से ज्ञेय और ज्ञायक की भिन्नता कर रहे, ऐसी ही भिन्नता वहां करनी पड़ेगी। तो तुम वो ज्ञान पर्याय को तो उसमें घुसा देते हो, घुसाओ पुत्रकाली भोग नहीं बनेगा दृष्टि का, तो संबंध ऐसा नहीं होगा। देखो वो तो ज्ञेय है, तो ज्ञेय के कारण ज्ञान होता नहीं, तो उसके कारण ज्ञान हुआ। का कारण परमात्मा कहने, खतरनाक बात कहने वाला हूं, समझ में आता है। जब ये इसके का रूमाल के कारण रूमाल का ज्ञान नहीं हुआ, तो त्रिकाली ध्रुव के कारण त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान कैसे हुआ। वो जो सुबह प्रकाशक का चक्कर चलता था, तो उसमें एक बहुत बात चलती थी कि पर कुछ जानता नहीं है, जानने में आता है। तो मैंने कहा ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव का है, त्रिकाली ध्रुव को जानता नहीं है, त्रिकाली ध्रुव जानने में आता है। इसलिए वो ज्ञान की पर्याय में झलकता है, वो ज्ञान की पर्याय को ये आत्मा जानता है, इसलिए वो पर को नहीं जानता है। तो मैंने कहा ऐसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञान की पर्याय में झलकता है और आत्मा उस पर्याय को जानता है, ऐसा ही वहां भी है। ये दोनों तरफ एक सा है। ये इस तर्क को मैं 40 साल से दोहरा रहा हूं, नहीं उतरता है कभी लोगों के, मेरे सामने सब स्वीकार कर लेते हैं और फिर पीछे ठोकते रहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान में उतरा ही नहीं ना, उन्हें समझ में ही नहीं आई ना। तो मैं कहता हूं समझना है तो आओ हमारे यहां भर्ती हो जाओ 5 साल के लिए, और फिर पढ़ के फिर कैसे तुम्हारी समझ में नहीं आता, फिर दो साल में बताया रास्ता। क्या बताया? 80वीं गाथा में कह दिया कि दुर्गुण अरहंत भगवान के दुर्गुण पर्याय से जाने वो आत्मा को जानता है। फिर 81 में कह दिया, फिर 82 में कह दिया कि वो मोक्ष चला जाता, और सारे अरहंत इसी मार्ग से मोक्ष गए हैं, पूरा मोक्ष तक पहुंचा दिया और उसका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। अब फिर लौटे तो वो मोह क्या है जो नाश को प्राप्त हो जाता है? तब 83 में कहा था मैं मोह का स्वरूप, 84-87 गाथा में फिर वो मुंह का चिन्ह क्या है कि करुणा भाव, करुणा भाव मुंह का चिन्ह। फिर भी अब इतनी ऊंची बातें कर करके फिर उन्होंने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये तो बहुत कठिन है। क्यों एक दूसरा रास्ता नहीं है? क्या है? कि बेटा स्वाध्याय जो जो जानते तत्वात् को प्रत्यक्ष आदि शास्त्र से दृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। मुझे मुझे बातें कर रहे थे और अभी एकदम नीचे पे आ गए, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। क्यों? कि हम क्या करें, हमारी समझ में समझ में नहीं आता, तो तुम अच्छा स्वाध्याय करो तो समझ में आएगा। वो क्या करें बोलिए, उपायांतर, इसी का सहयोगी उपाय, उसका नाम उपायांतर है, दूसरा उपाय। वो कोई अलग रास्ता पर ले जाएगा ऐसा नहीं। इसको उदाहरण देके बताऊं 2 मिनट में। एक किसान था, जिंदगी भर उसने खेती बाड़ी करी, बहुत पुण्य पाप किए, बुढ़ापे में हर एक को धर्म करने की सोचती है ना। मरते मरते देवगाली में एक कमरा लेकर और 2-4 साल बिता लिए तो वो समझता मेरा मोक्ष हो जाएगा। सबको सोचती है बुढ़ापे में, किसान को भी सूझी। तो वो गांव के पंडित के पास गया कि पंडित जी मुझे वो जो ब्रह्म है ना अपना भगवान, उसका स्वरूप समझना है। क्या अभी अभी मैं समझाता हूं? बैठा रहा। देखो सर्वम खलमिदं ब्रह्मानेह नानास्ति कंचन, आरामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यन्ति कश्चन। कि सारा जगत ब्रह्ममय है, यह आराममय सब जग जानी। ये सारी दुनिया मूर्ख है, उस आत्मा को तो जानती नहीं है पर ब्रह्म को, और उसकी जो रचना बाहर माया दिखती है ना, इसमें उलझी है। यही आत्मा का रहस्य, हाँ यही ब्रह्म का रहस्य, समझ में आए? क्या भैया, ये पंडित ने मुझे आधे 15 मिनट में समझा दिया। ऐसा कहीं होता है कि सही 15 मिनट में समझ में आ जाता होता तो सारी जिंदगी ये पंडित लोग और संत लोग झूमते रहते हैं और कहते अभी तक हमें सम्मत दर्शन नहीं हुआ, ये कैसे हो जाएगा? क्यों कहूँ के पंडित तरकारी जो भगवान आत्मा पर से रह प्रयास केवल ज्ञान से रह शुद्ध बुद्ध है उसको तुम अपना अपन माने समझ। अरे वाह, तो फिर पचास पचास साल तुम क्या कर रहे हो? माथा कहीं नहीं है, नहीं मन अपन बनारस चले, वहाँ बड़े बड़े संत लोग पंडित लोग होंगे, उनसे समझेंगे। ये गाँव का पंडित क्या जाने? क्यों वहां गए? तो वहां जाके उसने कहा कि महाराज हम ब्रह्म का स्वरूप समझना चाहते हैं, तो आए करते क्या हो? खेती बाड़ी थी हमारे फला गांव में, तो ऐसा बहुत सब पूछा तो क्या तुम्हारे गांव में कोई पंडित नहीं था? उससे ही पढ़ लेते फिर। हाँ यहाँ क्या हुआ है, तुम क्या करोगे? हाँ यहाँ आगे बहुत तकलीफ होगी, कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे पियोगे? कि नहीं रही महाराज, हाँ तो एक गांव में हमारे पंडित, लेकिन हमने उससे पूछी लेकिन वो कुछ हमें समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया, कुछ जानता नहीं है। ऐसे ये गांव वाले हैं क्या जाने? इसलिए हमें अच्छा उनकी समझ में आ गया, इसकी समझ में क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा बेटा एक साल तक हमारी गाय की सेवा करना पड़ेगी, गो सेवा सबसे बड़ा धर्म है, तुम गौशाला नहीं खोल सकते तो मत खोलो, हमारी गाय की गोबर वोबर साफ करो, ये करो वो करो, साल भर तक गाय की सेवा करी। क्यों? फिर साल भर बाद आए तो क्या गुरानी की सेवा करनी पड़ेगी, जो गुरानी बताए वो काम करो, फिर खेत का काम करना पड़ेगा। 3-4 साल में जब हो गए कि महाराज आपको बता दो, आपको बता दो, अच्छा अच्छा दिवाली के दिन बताएंगे आना। वो दिवाली के दिन वो आया तो उन्होंने कहा बोलो भाई, तो नहा धोके बैठो, अच्छी तरह से पद्मासन लगाओ, ये पैर ऊपर ऊपर नीचे, जिसकी हड्डी सीधी, नाक टेढ़ी नहीं सीधी रहो। अब हम बोलते हैं सर्वम खलो वो ही चंद बोला जो गांव के पंडित ने बोला था, क्योंकि ये तो हमारे गांव के पंडित ने ही बता दिया था। 3 साल में तुमने हमें ये बताया कि बेटा ब्रह्म का रहस्य तो यही है, लेकिन तुम्हारी चित्त की भूमि उस वक्त अपवित्र थी तो उसमें वो ग्रहण नहीं हुआ। अब तुम यहाँ रह करके तुम्हारी चित्त की भूमि की शुद्धि हुई है तो शायद ये ग्रहण हो जाए। बात तो वही है, यदि तुम्हारे समझ में नहीं आता है तो 86वीं गाथा पढ़ो।